मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 23 मई 2018 है और आज के इस afis.com के टेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले दो दिनों के ही पैटर्न को हम आज आगे बढ़ाते हैं और जिसके तहत हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन की प्रिपरेशन के बारे में बातें कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, मैंने दो दिनों में पहले दिन आपसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो आपका पार्ट है जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर का, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा की थी कि किस तरीके से वो आपके प्री मेंस और इंटरव्यू तक में बहुत ज्यादा मायने रखता है। मेंस में तो 20-25% क्वेश्चंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आते हैं और प्री में लगभग 10% उसका रोल है, 10-15% तो आप उसकी उपेक्षा कतई नहीं कर सकते। और इसके बाद फिर उसके नेक्स्ट डे यानी कि कल मैंने आप को उसके पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की थी। हाँ, ये जरूर है कि उस पाठ्यक्रम को मैंने आपके सामने बहुत डिटेल में नहीं बताया है, है ना, उसका जो क्रक्स है वही केवल मैंने आपको बताया। आज मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल की खुलासा को स्पष्ट करना चाहूंगा कि उसकी डिटेलिंग क्या होगी, और डिटेलिंग के बाद अगर वक्त बचा तो फिर हम इसकी चुनौतियों के बारे में बातें करेंगे, नहीं तो फिर उसके बारे में हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। देखिए, जब हम इस सिलेबस के डिटेल्स पर आते हैं जिसकी हम लोगों ने चर्चा की, तो पहली बात तो यह है कि मैंने आपसे कहा कि आपको अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों को सबसे ज्यादा तरजीह देनी है, और पड़ोसी देशों की एक लंबी एक लिस्ट है जो बहुत लंबी भी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि आप उसमें से देशों को चुन लीजिए, एक एक देश को, जैसे चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, नीचे फिर श्रीलंका है, फिर उधर बांग्लादेश है, म्यांमार है, नो डाउट कि कुछ सीमा तक भूटान भी हमारे लिए मायने रखता है, हालांकि उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई विशेष घटना घटित होती है भूटान के साथ भारत के संबंधों पर तो डेफिनेटली भूटान को भी आपको लेना चाहिए। और इसके बाद जो दूसरे देश हैं, नेपाल है, नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो देश के रूप में हो गया, और इसके बाद फिर वो संगठन के रूप में हो गया जिसकी चर्चा मैं इससे पहले कर चुका हूं। तो इनकी तैयारी के लिए आपको करना यह होगा कि दो चीजें हैं, इसके दो भाग हैं, देखिए बहुत स्पष्ट रूप से इसके दो भाग हैं। पहला तो यह है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश, हमारे संबंधों के इनके साथ क्या बैकग्राउंड रही है, कहां से हमारे संबंध शुरुआत होते हैं। और ये आपको मालूम है कि भारत का जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो शुरू होता है 1947 के बाद, क्योंकि 1947 से पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, तो हमारे बिहाफ पर वो अपने इंटरनेशनल रिलेशन एस्टेब्लिश करते रहते थे। और चूंकि पूरे एशिया अफ्रीका के पता नहीं कितने देशों में छाए हुए थे, तो अगर वो दूसरे देश भी क्या थे, वहां भी ब्रिटेन ही बैठा हुआ था, तो वो हम नहीं लेकर के चलते। तो जो शुरुआत होती है हमारी 1947 से होती है, राइट? तो हम 1947 से लेकर के, और जबकि अब आप तैयारी कर रहे हैं, आपको यहां तक की बैकग्राउंड मालूम होनी चाहिए। लेकिन जब मैं बैकग्राउंड मालूम होनी चाहिए की बात कह रहा हूं, तो देखिए यहां दो भाग इसके भी हैं, या दो रूप हैं, कह लीजिए, भाग ना कहें, इसके दो रूप हैं। इसे बहुत अच्छे तरीके से दिल में बिठा लीजिए, दिमाग में भी बिठा लीजिए, और इसके दो रूप हैं। एक रूप होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कि पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के तहत भी आप यही सब कुछ पढ़ रहे हैं, पड़ोसी देशों के साथ संबंध यही पढ़ रहे हैं। और इसका दूसरा रूप कौन सा है, जनरल स्टडीज का। हमारा अभी जो संबंध है वो किससे है, जनरल स्टडीज से है। और मित्रों, इन दोनों में फर्क होगा, याद रखिए। जब हम जनरल स्टडीज कर कह रहे हैं, इसका सामान्य सा अर्थ यह हुआ कि जो उसके बारे में आपको मूलभूत मोटी मोटी बातें जाननी चाहिए, बस, बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी में आपको नहीं जाना है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, अगर आपको मेरी बात पर कोई शक लग रहा हो या भ्रम पैदा हो रहा हो, डाउट हो रहा हो, तो आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देख लीजिए। अनसॉल्व पेपर उठा करके देखने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें दूसरे क्वेश्चन भी, देखिए इंडियन पॉलिटिकल साइंस पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देख लीजिए, और इसके बाद जो इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको देख लीजिए। दोनों के चरित्र में आपको रात दिन का अंतर दिखाई देगा, रात दिन का अंतर इस मायने में कि जो पॉलिटिकल साइंस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भारतीय संदर्भ के हैं, आप देखिए कि वो कितने एनालिटिकल हैं। इतने एनालिटिकल हैं कि कुछ प्रश्न तो बिल्कुल सिर पर से गुजर जाते हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, पूरा सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन हमारे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि हम इसमें लिखें कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। और जो थोड़े बहुत पल्ले पढ़ रहे हैं वो इतने जटिल से हो रहे हैं कि उसमें से रास्ता निकालना मुश्किल हो रहा है। और सच पूछे तो यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में कम नंबर मिलते हैं, जिसकी चर्चा मैंने दो दिन पहले के एपिसोड में की थी। ये बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उस पर इतने समीक्षात्मक, इतने विश्लेषणात्मक, इतनी गहरी दृष्टि वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि उनकी तैयारी करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन शायद अब यूपीएससी सोचता होगा कि भैया ये स्टूडेंट है, ये सिविल सर्वेंट बनने जा रहा है, भारत में ही रह रहा है, तो भारत की पॉलिटिक्स को तो इसे बहुत अच्छे तरीके से जानना ही चाहिए। और देखिए, जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो उसमें सिविल सर्वेंट का भी तो हिस्सा है, उसमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन का भी हिस्सा है सिलेबस में, देखिए तो। और आप वही करने जा रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि मैं अगर सिविल सर्विस में जा रहा हूं तो मेरा मुझे पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है। पॉलिटिक्स से लेना देना है, क्योंकि आपके जो मास्टर होंगे, जो एग्जीक्यूटिव मास्टर होंगे, जो लेजिस्लेचर के जो मास्टर होंगे, वो पॉलिटिशियंस ही तो होंगे। अगर आप पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी आप नेशंस के लिए बना रहे हैं, लेकिन बनवा कौन रहा है? ये पॉलिटिशियन ही बनवा रहे हैं। तो आप ये कतई मत समझिएगा कि भैया नहीं, मेरा तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए वो जो इंडियन पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट होता है उससे बहुत कठिन प्रश्न पूछते हैं, बहुत उलझाव वाले प्रश्न पूछते हैं, जिसको सुलझा पाना उतना आसान स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। लेकिन आप इंटरनेशनल रिलेशन वाले प्रश्न देखिए, वो फ्लैट्स जैसे होते हैं, वो सब सिंपल और सरल प्रश्न होते हैं, उनमें उलझाव नहीं होगा। उसमें एक तरीके से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत इसके लिए क्या कर रहा है, भारत को क्या कदम उठाने चाहिए और क्या होने चाहिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो बड़े सरल और बड़े आसान से होते हैं। तो यूपीएससी इस बात को समझता है कि इंटरनेशनल दृष्टि विकसित कर पाना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो काम करते हैं वो डिप्लोमेट कहलाते हैं, वो सर्वेंट नहीं कहलाते, वो सिविल सर्वेंट नहीं कहलाते, वो डिप्लोमेट है, राजनयिक है वो, जिसे एक व्यंगात्मक या पुरानी भाषा में कूटनीतिज्ञ कहते हैं। वहां चीजें स्ट्रेट नहीं होती हैं, राइट? तो इस स्टेज पर आपको सरल तरीके से ही उन्हें जानना और समझना पड़ता है। तो ये आपके बहुत ही पक्ष की चीज है। तो इसीलिए जो कि मैंने कहा कि जो हम अपने नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जानेंगे, या जो हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानेंगे, जो हम क्षेत्रीय और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे, उनकी केवल पृष्ठभूमि को देखेंगे, पृष्ठभूमि और अब तक का इतिहास, अब तक भारत के क्या एक तो उनका ठीक है उद्देश्य हम जान गए, भारत के साथ उनके संबंधों को जान गए, तो ये तो आपको अभी तक की किताबों में मिल जाएगा, राइट? अब यहां से आपकी परीक्षा की घड़ी शुरू होती है। किताबों में जो कुछ था वो आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया, पृष्ठभूमि आपको मालूम होगा, लेकिन याद रखिएगा, बिना पृष्ठभूमि समझे आप आगे की चीजों को नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। अब आगे जो होगा वो सारी की सारी जो तैयारी होनी है वो करेंट अफेयर्स से होनी है, और इसमें केवल न्यूज, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन यही आपकी मदद कर सकते हैं, दूसरे कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। किताब तो जो छपनी थी छप गई, और अगर किताब का जो लेखक है वो बहुत संवेदनशील है तो उसने वहां तक की घटनाओं को उसमें ले लिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। हाँ, जब अगले साल नई किताब छपेगी या दो साल बाद छपेगी तो उसमें हो सकता है कि इस बीच की घटनाएं शामिल हो जाएं। तो इसका जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, याद रखिए, वो है इसको अपडेट करते रहना, अपडेट करते रहना, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। यानी कि जब हम देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में तैयारी करेंगे तो पहले हम उसकी पृष्ठभूमि सब देशों की अच्छी तरह से समझ लेंगे, और इसके बाद फिर हम सबके नोट्स बनाएंगे। आप भले ही पृष्ठभूमि के नोट्स मत बनाइए, पृष्ठभूमि के नोट्स परीक्षा में पूछे उत्तर लिखने के काम उस तरीके से नहीं आएंगे कि आप सीधे उसमें से उठा करके लिख सकें। ये जो नोट्स हैं, ये जो आपने करंट अफेयर्स के पॉइंट इकट्ठे किए हैं उनके एनालिसिस करके अपनी बात कहने के काम आएंगे, क्योंकि जब आप पृष्ठभूमि नहीं जानेंगे उन देशों के साथ भारत के संबंधों की, तो मान करके चलिए कि आप इस सामग्री का भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए मित्रों इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। राइट। अब आप देखिए कि जो इसका जो एक और पार्ट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है भारत। जब हम भारत की बात करते हैं तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो भारत के संदर्भ में है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंध एस्टेब्लिश करना है। अगर दूसरा देश भी अपनी तरफ से भारत की आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो भारत जब अपनी दोस्ती का हाथ उसकी तरफ बढ़ाएगा तो उसके सामने अपना एक फ्रेम बना हुआ है। फ्रेम बना हुआ है कहने का मतलब है कि उसकी अपनी एक विदेश नीति है, उसकी फॉरेन पॉलिसी है, और अपनी उस नीति के तहत वह अपने काम को अंजाम देता है। हम एक डायरेक्शन में चलते हैं और दुनिया के सभी देशों की अपनी अपनी नीतियां होती हैं। स्वाभाविक है कि नीतियां होती हैं, उनमें बदलाव होते रहते हैं। नीति का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल स्टैटिक है कि अब इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, जैसे कि कोई ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और ये बिल्कुल अब इसमें संशोधन भी करना होगा तो बहुत ज्यादा मैंडेट की जरूरत है, नॉट एट ऑल। सामान्य तौर पर हर देश अपनी नीतियां निर्धारित कर लेता है कि हमको इस फ्रेम में काम करना है, और उसी फ्रेम में वो थोड़े बहुत बदलाव के साथ अपनी नीतियों को अंजाम देता रहता है, और आगे जाकर के अगर उसे जरूरत पड़ती है कि नहीं नहीं अब ये नीति तो अब पुरानी ही पड़ गई, अब तो बिल्कुल नई नीति ही लानी पड़ेगी, तो नई नीति ले आता है, उसमें क्या दिक्कत है। तो आपको भारत की जो विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, बहुत अच्छे तरीके से, कि हमारी विदेश नीति क्या रही है, कैसे धीरे 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 बदलती रही है, और उसमें क्या क्या नए आयाम जुड़ते चले गए हैं, और जो नए आयाम जुड़े हैं वो क्यों जुड़े हैं, वो सीधे सीधे नहीं। जैसे मान लीजिए कि लंबे समय तक हमारी एक विदेश नीति चलती रही, ठीक है, नेहरू जी से शुरू हुई, फिर हमारे प्रधानमंत्री आते रहे, उन्होंने थोड़ा बहुत बदलाव कर कॉस्मेटिक चेंजेस करते रहे अपनी जरूरत के हिसाब से। इसके बाद फिर आकर के हम देखते हैं कि पीवी नरसिंह राव जी के समय में 1991 में 92 में शुरुआत हो जाती लुक ईस्ट पॉलिसी, तो वो लुक ईस्ट पॉलिसी हमारी विदेश नीति का एक हिस्सा हो गया। फिर आगे चल करके उसी में जुड़ जाता है गुजराल सिद्धांत, जब गुजराल साहब विदेश मंत्री थे, आई के गुजराल, बाद में हमारे प्रधानमंत्री भी बने, तो उन्होंने उसी को कुछ और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी बात कही, तो वो एक गुजराल सिद्धांत आ गया, ठीक है, चलिए। इसके बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को बिल्कुल एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं अब इस पर थोड़ा सा और सक्रिय होकर के काम करना है। तो ये हमारी विदेश नीति का एक डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या है, आप यूं कह लीजिए कि ये माइल स्टोन है, ये हमारी विदेश नीति के माइल स्टोन है। तो आपको भारत की विदेश नीति को बहुत अच्छे तरीके से जानना होगा, आपको समझना होगा, और आप देखिए कि आपके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि आपको इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पढ़ना है, नहीं दिया हुआ है ना, तो फिर मैं क्यों कह रहा हूं आपको पढ़ने के लिए। क्या मैं आउट ऑफ सिलेबस की बात कर रहा हूं? मैं आउट ऑफ सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको इंडिया का रिलेशन नेबर के साथ देखना है, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ देखना है, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ देखना है, अदर्स डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री के साथ देखना है, ऐसी पॉलिसीज और ऐसे उनके पॉलिटिक्स के संदर्भ में जिनका इम्पैक्ट या तो भारत पर पड़ रहा है या उनके देशों में जो हमारे भारतीय रह रहे हैं उन पर पड़ रहा है, तो बट नेचुरल है कि फिर आपको ये मालूम तो होना चाहिए कि भैया हम किस नीति के तहत काम कर रहे हैं, कैसे ये हमारे इंटरेस्ट को बाधित कर रहा है। ये तो तभी समझ में आएगा ना जब हमको अपने देश के अपने हितों की जानकारी बहुत अच्छे से हो और हमारे सामने अपना रास्ता क्लियर हो कि देखिए हमारी नीति ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम संबंधों की समीक्षा करेंगे उस समीक्षा की कसौटी क्या होगी, किस कसौटी पर आप कहेंगे कि नहीं नहीं हम बिल्कुल सही हैं, दूसरा गलत है, या हमसे यहां चूक हो गई, यहां हमें थोड़ा सा ये करना चाहिए था, या दूसरे देश अगर हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप उन्हें जवाब कैसे दे पाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एकदम फ्लैट ही होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समीक्षा की जरूरत होती है, सीधे सीधे पॉइंट्स लिखने के लिए नहीं आते। तो एक समीक्षात्मक दृष्टि विकसित हो, और भले ही वो माइल्ड हो, एक सामान्य किस्म की ही समीक्षात्मक दृष्टि हो, तो इसके लिए तो बहुत जरूरी है ना कि आप ये भारत की विदेश नीति के बारे में जाने और थोड़े से अच्छे से जाने। इसको आपको थोड़े से अच्छे से जानना होगा, क्योंकि ये यूं समझ लीजिए कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पेपर है, जो सिलेबस है, उसकी नींव है, उसका ये फाउंडेशन है। जब ये फाउंडेशन आप अपनी मजबूत बना लेंगे तो फिर आप पाएंगे कि जो दूसरी चीजें हैं उनको समझने में जानने में आपको बहुत आसानी हो रही है। तो मित्रों, ये मैंने थोड़ी सी बातें आपसे और की हैं जो आपके सिलेबस के ही आगे का एक हिस्सा है कि उसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे, उसको आप कैसे लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है और आज बस इतना ही, इजाजत चाहूंगा, आगे हम और इस पर बातें करेंगे। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।